पृष्ठ संख्या 17। चाहे अचेतन रूप से ही सही, यह नहीं भूलना चाहिए कि नाटक दर्शक समूह बनाता भी है। दर्शकों की थिएट्रिकल समझ और रंग अनुभव की कमी के कारण कभी-कभी नाटककार अपने रचना क्षेत्र को, रचना पद्धति को सिकोड़ भी लेता है। शेक्सपियर ने थिएटर का आदमी होने के कारण अपने दर्शक की आंख से उसकी प्रतिक्रिया को अनुभव करते हुए लिखा, दर्शक का शिक्षित होना उतना जरूरी नहीं है जितना थिएटर का अभ्यस्त होना, क्योंकि दर्शक के सुस्त और सक्रिय और गर्म और ठंडा होने के अनुसार ही अभिनेताओं का अभिनय, नाटककार के सारे नाटक का टेम्पो बदलता जाता है। यह नाटक पर निर्भर करता है कि वह दर्शक समूह को अधिक खुले दिल दिमाग के साथ छोड़े। जरा खुली दृष्टि से देखा जाए तो दर्शक मनोवृत्ति को बदलने में नाटक और रंगमंच का सदुपयोग हो सकता है। बाल रंगमंच का प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी नाट्य प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रत्यक्ष कला है जो युवा मानस को अभिव्यक्त भी करती है, बदलती है। युवा आक्रोश को रचनात्मक दिशा देने की शक्ति इसी विधा में है। नाटक और रंगमंच युवा अभिव्यक्ति का सृजनात्मक माध्यम बन सकता है। कुछ विश्वविद्यालयों में यह प्रयोग हुए हैं, खासकर विदेशों में। रंग शिल्प रंगमंच का महत्वपूर्ण तथ्य है। अरस्तू ने साज सज्जा को नाट्य प्रदर्शन का आधार माना था। पहले दर्शक दृश्य सज्जा भव्य रंग चयन के लिए जाता था और कृत्रिम रंग शिल्प काफी आकर्षक तत्व माना जाता था, यानी पर्दों का प्रयोग, चटक रंग, मुखौटा, तड़क भड़क वाली वेशभूषा, गहरा बनावटी वेश इत्यादि। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद कृत्रिमता का स्थान धीरे धीरे अभिनय ने ले लिया। यथार्थ सादा रंगमंच, प्रतीकात्मकता आदि बाह्य अलंकरण कम हो गए। सुविधा, स्वाभाविकता, जीवन की निकटता, अभिनय, सौंदर्य मुख्य हो गए। रंग शिल्प एक व्यापक शब्द है जिसमें दृश्य बंध नहीं आता। वस्त्र, प्रकाश व्यवस्था, श्रृंगार, ध्वनि प्रभाव, संगीत सभी आ जाते हैं। इन सभी के लिए नाटक की अपनी विशेष मांग होती है, जिसे समझते हुए निर्देशक अपनी कल्पना शक्ति का समुचित प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि वेशभूषा रूप सज्जा भी नाटक के अर्थ को, चरित्र की दोहरी व्यंजना को प्रकट करने में सहायक होती है। इसीलिए वेशभूषा का चयन और उपयोग, रूप सज्जा भी अपने में कलात्मक कार्य है, क्योंकि अभिनेता का पूरा व्यक्तित्व और नाटक के पात्र, उसकी अर्थ व्यंजना उससे सीधे प्रभावित होती है। विश्वसनीयता और प्रभावपूर्णता आदि पहली शर्त हो सकती है। ये तत्व अभिनेता की अभिनय कला और व्यक्तित्व को उभारने में सहायक होने चाहिए, न कि उसके बोझ से दब जाने वाले। बहुत सी बातें, मूड, स्थितियों, नाटकीय प्रभाव केवल प्रकाश योजना से ही पैदा किए जा सकते हैं। रोमांटिक वातावरण के लिए अत्यंत करुण, विषादपूर्ण वातावरण के लिए किसी भयंकर पैशाचिक वातावरण की सृष्टि में प्रकाश ही मुख्य तत्व होगा। इसीलिए नाटक की मांग के अनुसार प्रकाश भी बदलेगा। इसी माने में ध्वनि प्रभाव और संगीत, नृत्य गीत भी नाटक को सार्थक बनाते हैं। पृष्ठ संख्या 18। नाटककार जिसका उल्लेख न भी करें, निर्देशक आवश्यक स्थलों पर ध्वनि प्रभाव देकर वातावरण को दर्शक तक पहुंचाता है। सभी बातें यह स्थापित करती हैं कि नाटक एक साहित्यिक विधा और सामूहिक कला है। नाटक का अध्ययन करते समय और उसे पढ़ते समय भी उसकी इस मौलिकता को ध्यान में रखना होगा। कोशिश करनी होगी कि नाटक में बुने हुए रंगमंच को कल्पना में साकार करें, खोजें, उसी में निहित रंग संवेदनाओं और रंग बोध को पहचानें। हर नाटक की अपनी अभिनय शैलियां, रूढ़ियां और रंग शिल्प होते हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के रंगमंच से आधे अधूरे का रंगमंच अवश्य ही भिन्न होगा। यह कहीं बाहर से विचार कर लाना नहीं है, ना आरोपित करना है। रचना में से उसकी सृजनात्मकता और रंग चेतना को ढूंढ कर बाहर लाना है। यह दूसरी बात है कि एक नाटक पर विभिन्न प्रयोग किए जाएं, लेकिन प्रयोग नाटक के स्वभाव को, आत्मा को पहचान कर ही होंगे, उसे एकदम भुला कर या नकार कर नहीं। इसीलिए नाटक सचमुच एक चुनौती है। हर नाटक अपने में पूरा आंदोलन है, पूरा साहित्य है, पूरी कला है। नहीं है तो उद्देश्यपूर्ण, मनोरंजक, संवाद बद्ध पुस्तक। हिंदी नाटककारों में अकेला नाम मोहन राकेश का उभरता है, जिसने नाटक को सशक्त विधा और रंगमंच को सजीव सार्थक माध्यम रूप में लिया, और जो नाटक और रंगमंच की कलागत मौलिकता और जटिलता को सामने लाया।